Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Yadidam kincha jagat sarvam prana yajati nishritam महद्भयं वज्रमुद्यतं च एतद्विदु रमृतास्ते भवन्ति संबद्धं वर्तमानं च गृह्यते चक्षुरादिना। हम अपने इंद्रियों के द्वारा जिन पदार्थों को जान लेते हैं, जानने के साथ हमारे उसी प्रकार की मान्यताएं निर्मित होती जाती हैं। इंद्रियों के द्वारा पदार्थ मालूम पड़ते हैं और वो जैसे मालूम पड़ते हैं वैसे हमारी वासनाएं निर्मित हो जाती हैं और वासनाओं के अनुसार हम बाहर के पदार्थों को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन उस स्वीकृति में हम कभी सोच नहीं पाते कि ये हमारी स्वीकृति यथार्थ है कि अयथार्थ है। वासना हमें पदार्थों को सत्य के रूप में दिखाती है। ये वासना का अज्ञान का प्रभाव है। बाहर की वस्तु हमें सत्य मालूम पड़ने लगती हैं, वासना के विषय की वस्तु हमें यथार्थ मालूम पड़ने लगती हैं। लेकिन ज्ञान के द्वारा जब वासना का क्षय हो जाता है तो हमारे दृष्टि में यथार्थता आ जाती है और हम पदार्थों के यथार्थ दर्शन करने लगते हैं। हमारे सामने जो आंख इस संसार को दिखाती हैं, ये आंख हमें यथार्थ रूप में नहीं दिखाती हैं, अयथार्थ रूप में दिखाती हैं। जैसे हमें दूर से चंद्रमा दिखाई देता है, बहुत छोटा मालूम पड़ता है, लेकिन वो छोटा थोड़ी है। सूर्य हमें आंख बहुत छोटा दिखाती है, लेकिन वो सूर्य छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। लेकिन आंख पर आप विश्वास करोगे तो आंख तो यही कहेगी कि वो तो बहुत छोटा है। आंख तो आपको यही बोलेगी कि चंद्रमा बहुत छोटा है, जिसको आप अपने हाथ में ले सकते हो। लेकिन हम आंख पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये हमारी इंद्रियां हमको यही बताती हैं कि तुम शरीर हो, तुम इंद्रियां हो, तुम चित्त की वृत्तियां हो। लेकिन हम अपनी इंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए इन पदार्थों को जानने के लिए एकमात्र हमारे सामने शास्त्र ही प्रमाण है। जब हम शास्त्र की दृष्टि से, शास्त्र की आंख से देखते हैं, प्रमाण वृत्ति से, तो उस समय हमें बाहर के पदार्थ यथार्थ मालूम पड़ते हैं। वासना की दृष्टि से वासना मूलक इंद्रियों की दृष्टि से जब हम दुनिया को देखते हैं तो दुनिया सत्य मालूम पड़ती है। लेकिन शास्त्र मूलक ज्ञान की दृष्टि से जब हम दुनिया को देखते हैं तो दुनिया भ्रममूलक मालूम पड़ती है। इसलिए श्रुति ने कहा कि इसका जो मूल है अधिष्ठान ब्रह्म तत्व है और उसी ब्रह्म तत्व का विवर्त रूप है ये सारा संसार, और इसी को कहा गया है विवर्तोपादान। हमारे सामने दो प्रकार के उपादान होते हैं, एक परिणामी उपादान कारण और दूसरा विवर्तोपादान कारण। जैसे व्यवहार में हम देखते हैं परिणामी उपादान कारण मिट्टी से घड़ा बना, कपास से कपड़ा बना, आटे से रोटी बनी, दूध से दही बना, ये परिणामी उपादान कारण है। माने दूध का दही परिणाम बन गया, दूध विकृत हो गया, विकार को प्राप्त हो गया, तो वो दही बना। और इसके मूल में क्रिया है, ये जो भी परिणाम होता है वो क्रिया सापेक्ष होता है। दूध में यदि क्रिया ना हो तो उसमें विक्रिया संभव नहीं है, कपास में यदि क्रिया ना हो तो उसका विकार कपड़ा बनना संभव नहीं है, मिट्टी में कोई क्रिया ना हो तो मिट्टी कभी घड़ा नहीं बन सकती, घड़ा बनना संभव ही नहीं है यदि मिट्टी में कोई क्रिया ना हो। कुम्हार उसमें क्रिया करता है, उस मिट्टी को बनाता है, मिट्टी के अंदर पानी डालता है, उसके बाद फिर उसका अगारा बनाता है, फिर क्रिया देकर उस चक्र को चलाकर क्रिया के द्वारा उसको आकार देता है, घड़े के आकार में उसको परिणत कर देता है। ये परिणामी उपादान कारण क्रिया सापेक्ष हैं और अनेकों कारण सापेक्ष हैं। केवल एक क्रिया नहीं, वहां अनेकों प्रकार के कारण हैं। वहां मिट्टी है, पानी है, चक्र है, उस चक्के को चलाने वाला दंड है, उसके आसपास के लोग हैं, हवा है, इसलिए वहां पर नौ कारण माने गए। ईशस तद्ज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्ट दिगे वच प्राग प्रतिबंध का भाव कारणा साधारण स्मृत। यहां तक कि वह ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर का प्रयत्न, देश काल, प्रतिबंध का भाव और प्राग भाव को भी कारण माना, ये नौ साधारण कारण माने। और असाधारण कारण के अंतर्गत वहां मिट्टी है, पानी है, चक्र है, कुलाल है, कुलाल की पत्नी है, वो गधा भी तो है जिसने मिट्टी ढोया। यदि गधा न हो तो मिट्टी का ढोना संभव नहीं, गधा न हो तो घड़े का निर्माण भी संभव नहीं। ये अनेकों प्रकार के कारण और कारणगत क्रिया, इसके द्वारा परिणामी उपादान कारण के द्वारा कार्य परिणत हो जाता है। और दूसरा जो कारण है वो विवर्तोपादान, जो विवर्तोपादान कारण है वो जैसे रज्जु में सर्प, शुक्ति में रजत, स्वप्न पदार्थ, ये परिणाम और विवर्त को समझना बहुत जरूरी है। समान स्वभाव अन्यथारूप परिणाम, विपरीत स्वभाव अन्यथारूप विवर्त, दो का समान स्वभाव हो और उसका जो रूप है ना वो अन्यथा हो, उसको परिणाम बोलते हैं। स्वभाव माने सत्ता, वेदांत में तीन प्रकार की सत्ता हुआ करती हैं, व्यावहारिक, प्रातिभाषिक और पारमार्थिक। ये बात तो आपको मालूम ही है, इस संसार की जो सत्ता है वो व्यावहारिक सत्ता है, और जो भ्रममूलक पदार्थ हैं जैसे स्वप्न पदार्थ हैं, रज्जु में सर्प हैं, शुक्ति में रजत हैं, बहुत से जगह पर हमें भ्रांतियां हुआ करती हैं, ये भ्रांति मूलक जो पदार्थ हैं उसकी प्रातिभाषिक सत्ता है। और ब्रह्म तत्व की, आत्म तत्व की पारमार्थिक सत्ता है। जो ईश्वर तत्व हैं, ब्रह्म तत्व हैं, वो न व्यावहारिक हैं और न प्रातिभाषिक हैं, वो पारमार्थिक सत्ता है। ये तीन सत्ताएं होती हैं। ऐसे यहां पर जैसे मिट्टी से घड़ा बना, तो मिट्टी और घड़े में, कार्य और कारण में आप सत्ता के विषय में सोचेंगे तो दोनों की सत्ता एक है। जो मिट्टी की सत्ता है वही घड़े की सत्ता है। मिट्टी की सत्ता व्यवहारिक सत्ता है। आपको भरोसा न हो तो आप मिट्टी को छू के देख लेना, आपको मालूम पड़ेगा कि हां ये मिट्टी है। वो व्यवहारिक सत्ता है, उसमें क्रियाकारिता है। व्यवहारिक सत्ता का अर्थ है क्रियाकारिता। व्यवहारिक सत्ता का अर्थ है जो ब्रह्मज्ञान के बिना बाधित नहीं होती है। व्यवहार काल में आपको सत्य मालूम पड़ती है। व्यवहार काल में आप जिसके द्वारा व्यवहार कर सकते हैं उसकी व्यवहारिक सत्ता है, मिट्टी की व्यवहारिक सत्ता है। और मिट्टी से जो घड़ा बना उसकी भी व्यवहारिक सत्ता है। मिट्टी से आपने घड़ा बना दिया तो घड़े की कौन सी सत्ता है? पारमार्थिक सत्ता तो संभव नहीं, क्योंकि फूटने वाला है। और उसकी प्रातिभासिक सत्ता भी संभव नहीं है, क्योंकि क्रियाकारिता है। आप घड़े से जल ला सकते हैं, घड़े से आप जल भर सकते हैं। इसलिए घड़े की जो सत्ता है वो व्यवहारिक सत्ता है। दोनों की सत्ता एक है, समान सत्ता, लेकिन अन्यथा रूप। दोनों की सत्ता तो समान है, लेकिन जो स्वरूप है ना वो अलग है। दोनों का आकार अलग है, मिट्टी का आकार अलग है और घड़े का आकार अलग है। आपको पानी पीने के लिए घड़ा ही चाहिए, आप मिट्टी के द्वारा पानी नहीं पी सकते। आपको पहनने के लिए वस्त्र ही चाहिए, आप कपास से अपना अंग नहीं ढक सकते। आपको मट्ठा बनाने के लिए दही ही चाहिए, आपको दूध से दही मट्ठा नहीं बना सकते। आप कितना भी कोशिश करेंगे तो दूध से मट्ठा नहीं बना सकते। भले ही दूध और दही की एक सत्ता है, व्यवहारिक सत्ता है, लेकिन उसके आकार में, उसके गुणधर्म में, उसके प्रवृत्ति में, उसके विकृति में, उनके दोषों में, गुणों में महत अंतर है, महत अंतर है। आप दूध पियोगे तो आपको खटास नहीं मिलेगी, आपको खट्टा चाहिए तो आपको दही चाहिए। इसे डॉक्टर बोलेगा कि भैया आपको कफ नहीं बढ़ाना है तो दही मत खाओ, खांसी है तो बोले दही मत खाओ, लेकिन दूध पीने के लिए मना नहीं करेगा। बहुत ज्यादा खांसी ना हो तो, नहीं तो कई बार आदमी को दूध भी खांसी बना देता है। ये दोनों में समान सत्ता होने के बाद भी उसके स्वरूप में, गुणधर्म में अंतर है, और इसी को परिणाम बोलते हैं, इसी को परिणामी उपादान कारण बोलते हैं। जो मिट्टी है परिणामी उपादान कारण है, परिणाम के प्रति उपादान कारण है, और मिट्टी का परिणाम घड़ा है, दूध का परिणाम दही है। ये हमारे शास्त्र के प्रामाणिक उदाहरण है, जिसका बहुत विचार किया गया। और जो विवर्त उपादान कारण है ना, उसमें बिल्कुल अलग। ये दो चीजें आपको वेदांत में समझना बहुत अनिवार्य है। परम पूज्य महाराज श्री ने बहुत विस्तार से इसका प्रतिपादन किया है कठोपनिषद के इन्हीं श्लोकों के प्रवचन में। परिणामी उपादान कारण में दोनों की सत्ताएं अलग हो और दोनों के स्वरूप भी अलग हो, उसको विवर्त बोलते हैं। जैसे आपने अभी दूध और दही में समझा, उसके बिल्कुल विपरीत हैं। रज्जु में सर्प, एक तरफ रज्जु है दूसरे तरफ सर्प है, आप दोनों में विचार कीजिए। बहुत ज्यादा अंधकार नहीं है, मंद अंधकार है। बहुत यदि अंधकार हो ना, आपको रज्जु का ज्ञान ही ना हो तो सर्प का भ्रम संभव नहीं है। रस्सी तो पड़ी है लेकिन बहुत गहरे अंधेरे में है, आपको रस्सी मालूम ही ना पड़े तो रस्सी में सर्प की भ्रांति नहीं होगी। आपके घर में पाइप पड़ा है, बहुत गहरे अंधेरे में पड़ा है, गहरे अंधेरे में आपको दिखाई नहीं दिया। आप कितना भी कोशिश करेंगे तो उसमें भ्रांति पैदा होगी क्या? नहीं होगी। इसलिए मंद अंधकार चाहिए। मंद अंधकार में अधिष्ठान का सर्वतोरूपेण बोध ना हो। आपको पूर्ण रूप से अधिष्ठान का बोध ना हो, पता न चले, और पूर्ण रूप से उसका अज्ञान भी ना हो। आपको रस्सी बिल्कुल ही मालूम ही नहीं पड़ रही है, वो कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, मोटी है, क्या है। अज्ञात के गर्त में यदि वो रस्सी पड़ी हो तो उसका बोध संभव नहीं है, और बोध नहीं है तो वहां भ्रांति भी संभव नहीं है। और पूर्ण प्रकाश विशेष रूप से आपको बोध हो गया, ये रस्सी है इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है, आपको यथा तत्ते न बोध हो गया। अब वहां पर भी भ्रांति संभव नहीं है। अधिष्ठान का पूर्ण रूप से बोध और पूर्ण रूप से अबोध, ये दोनों भ्रांति के विरोधी हैं। एक भ्रांति को मिटा देता है और दूसरा भ्रांति को पैदा ही नहीं होने देता है। अब वो पूर्ण बोध हो गया तो भ्रांति को मिटा देगा, वो भ्रांति उस समय नहीं रहेगी। और यदि रस्सी का पूर्ण अबोध है तो वो भ्रांति को पैदा ही नहीं करने देगा। ये पूर्ण अबोध और पूर्ण बोध दोनों भ्रांति के विरोधी हैं। भ्रांति के साधक हैं मंद अंधकार हैं और सामान्य बोध है, और वो सामान्य बोध वो विपरीत बोध के प्रति, भ्रांति के प्रति कारण बन जाते हैं। मंद अंधकार में रस्सी पड़ी है, आपको ज्ञान हुआ, सामान्य क्या हो, कुछ पड़ा है कुछ, और वो जो कुछ है ना, ये बहुत खतरनाक है। आदमी ज्ञानी है तो बहुत खुश है, और अज्ञानी है वो भी बहुत खुश है। जो ज्ञान और अज्ञान के बीच की जो कड़ी है ना, वो बहुत खतरनाक है। विदुर जी महाराज जी ने भागवत में एक बहुत सुंदर बात बोली। उन्होंने कहा दुनिया में जो सबसे बड़ा ज्ञानी है बहुत खुश है, और जो बहुत अज्ञान में पड़ा है, बहुत अज्ञान में, गहरे अज्ञान में पड़ा है, बोले वो भी बहुत खुश है, बहुत खुश है। इसलिए कबीर जी ने तो चुटकी ले ली। कबीर जी ने कहा खाए और सोए। अच्छा। अरे बोले वो जो अज्ञानी है ना, अरे वो तो बहुत मस्त है। कबीर जी ने कहा कि वो खाता है और सोता है, कोई टेंशन नहीं है वहां। और जो परम ज्ञानी है वो भी खाए और वो भी मस्त है, उसको भी चिंता नहीं है। जो मस्त फकीर है उनको क्या, अब सुखदेव जी महाराज को क्या चिंता, वो तो मस्त है। लेकिन जो बीच वाली जो कोटी है ना, बीच वाली कोटी जो न पूरे ज्ञान में है और न पूरे अज्ञान में, वो बीच वाली जो कोटी है वो बहुत खतरनाक है। न खाए और न सोए। वहां न खाना है ढंग से और न वहां सोना है। इसलिए विदुर जी महाराज ने कहा कि ये दो कोटियां बहुत उत्तम है, उत्तम है। और जो मैं हूं ना, वो बीच वाली कोटी में हूं, ऐसे बोला, बीच वाली कोटी में। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऊपर वाली कोटी में प्रवेश करूं। ये अज्ञान को, भ्रांति को पैदा करने वाली कोटी है। एक कुछ, ये जो कुछ का जो बोध है ना, कुछ का बोध, वो भ्रांति को पैदा करते हैं। पूरा ज्ञान नहीं है, पूरा अज्ञान भी नहीं है, और वो कुछ का बोध है, और वो कुछ का जो बोध है वो कुछ पैदा कर देता है। वो कुछ का बोध कुछ को पैदा कर देता है, और उसी का नाम भ्रांति है। वो रस्सी पड़ी है मंद अंधकार में, कुछ, ओहो कुछ है, कुछ है, और वो कुछ का जो बोध है चट से, वो लंबी लंबी मालूम पड़ती है ना, लंबी लंबी थोड़ी, कुछ 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 लंबी मालूम पड़ी, कुछ कुछ। और वो जो कुछ कुछ लंबी मालूम पड़े, वो कुछ कुछ जो है ना, वो सांप में बदल जाती है भावना। और आदमी सोचना, ओहो सांप, और एक बार भ्रांति हो जाती है तो वो फिर आपको तो मालूम है आदमी एकदम उछल पड़ता है, वो सांप देख लेता है तो आदमी उछल पड़ता है, होने से आदमी प्रभावित नहीं है। आदमी वस्तु के होने और वस्तु के नहीं होने से दुखी नहीं है, वस्तु के होने और नहीं होने से आदमी परेशान नहीं है, होने और नहीं होने के बोध से आदमी परेशान है, समझ से आदमी परेशान है। वहां पर सांप है कि नहीं है, जैसे आपने सांप देखा उछल पड़े, और केवल उछल नहीं पड़े भी, आप उछल पड़े बोलते हैं कि नहीं, उछल पड़े का मतलब क्या, उछले भी और गिर भी पड़े, घुटने भी टूटे, सिर भी फूटा, बहुत मुश्किल से भागे, चिल्लाने लगे, लंबी लंबी श्वास लेने लगे, और हो सकता है कि कमजोर आदमी हो तो। हाँ भाई, अटक जाए, इतना इतना भय पैदा हो गया, इतना भय पैदा हो, उछल पड़े। अभी हम लोग नवरात्रि में नर्मदा के किनारे अनुष्ठान कर रहे थे, तो मछलियों को दूध पिला, ऐसे दूध माँ को, नर्मदा जी को दूध चढ़ा रहे थे, तो मछलियों को दूध बहुत अच्छा लगा, वो दूध पीने के लिए आए, वो बड़ी बड़ी मछली हमारे यजमान के साथ, और वो जैसी मछली आई और पैर को छुआ उसने, ओ उछल पड़े वो उछल पड़े, वो रुचि सोया वाले थे वो। अरे मैंने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं हंस दिया हंस दिया, मैंने कहा कुछ नहीं, अरे पता नहीं क्या है, अब कुछ नहीं, मैंने कहा मछली है, छोटी सी मछली है, ज्यादा नहीं, और उनके पैर थोड़े गोरे गोरे थे, मछली को भ्रम हो गया होगा कुछ, खाने की अच्छी चीज है, और पता है हमारे पास नहीं आती, उन्हीं के पास जाती है, और जैसे जा करके वो छू देती होगी, ज्यादा नहीं, और वो भूल जाते थे, फिर वो जैसे मछली थोड़ा छू वो उछल पड़ते हो, और वो हाथ में दूध का लोटा इधर उधर हो जाता, उछले भी और पड़े भी। और आदमी जब कमजोर हो ना, सांप देखा ओहो उछल पड़े और गिर पड़े, हो सकता है कि नमो नमो भी हो जाए। तो वहां इतना जो प्रभाव पड़ा, उछल पड़े, वो होने से या नहीं होने से, या होने नहीं होने के बोध से, हमारे जीवन को प्रभावित जो चीजें करती हैं वो होने या नहीं होने से नहीं, होने और नहीं होने के भ्रांति से, होने या नहीं होने के समझ से, हमारे जीवन को प्रभावित वस्तुएं नहीं करती हैं, वस्तुओं का अस्तित्व नहीं करता है, वो अस्तित्व का बोध करता है। इसलिए हमारी जो पहुंच है ना, वस्तु तक नहीं है, उसके वस्तु के अस्तित्व के बोध तक है। आप कितना भी कोशिश करें, वस्तु तक आपकी पहुंच नहीं है। आपके पास जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें ज्ञानात्मक हैं, और उसी को आप बोलते हैं, आप समझ कोई है ऐसा बोलते हैं। आज आपके पास 100 रुपया है, ये क्या है, ये ज्ञानात्मक है कि वस्तुआत्मक है? आपको केवल मालूम है, और वो मालूम होना उतना निकाल दे तो आपके पास बहुत बड़ा घर है, ये घर है, ये आपके अंदर प्रतीति है, बोध है, और वो उतना बोध यदि हटा दे तो आप मानेंगे? बस उतनी प्रतीति, आपके दिमाग से इतनी प्रतीति निकाल दे कि स्वामी प्रणवानंद यहां है, और आपको उस समय आकर किसी ने पूछा कि प्रेमपुरी में स्वामी प्रणवानंद है, तो आप क्या बोलोगे? तो हमारे जीवन में जो भी चीजें मालूम पड़ रही, मालूम पड़ रही है, वही मालूम पड़ रही वही है, ये सारी चीजें हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, वो बोधात्मक हैं, वो बोध भ्रांति रूप हो या यथार्थ हो उसे कोई अर्थ नहीं है। केवल आपके जीवन को प्रभावित करने वाली चीज वो बोध है। आपको मालूम पड़ा ये रज्जु में सर्प है और मालूम पड़ते ही आप प्रभावित हो गए, वह नहीं है, वह नहीं है। और उस समय आके कोई आपको बुला दे, बोल दे भैया क्या हुआ, आप बोलेंगे सांप सांप, और हो सकता बुखार भी आ गया, बुखार आ गया है, डॉक्टर को बुलाओ, आप परेशान हो गए, आप भी परेशान हो गए, क्योंकि आप भी भ्रांति में चले जाएंगे, आपको भी लगेगा वो सांप देखा है, इन्होंने सांप देखा है। उस समय आपको ये नहीं लगेगा कि इनको भ्रांति हो रही है। तब तक दोनों की भ्रांति मिटने का उपाय नहीं जब तक वहां पूर्ण प्रकाश ना आए। अच्छा, आपने फिर बैटरी लाई, भाग दौड़ करके आपने देखा, सांप नहीं मिला, तो आप क्या सोचेंगे? आप ये सोचेंगे वो भाग गया है, आप यही सोचेंगे वो भाग गया, अरे यही देखा था मैंने, वो भाग गया, चला गया, इधर उधर चला गया वो। और आपके मन में यह भी भ्रांति पैदा होगी कि फिर आएगा, और जैसे अंधेरा होगा ना तो आप डरेंगे, ओहो यहां तो सांप देखा था मैंने, ओहो यहां सांप देखा था, वो आएगा, जरूर आएगा, संभावना है, आने की संभावना है। और वो आगे की सारी प्रक्रिया एक भ्रांति अनेकों भ्रांतियों को पैदा करती है, एक भ्रांति अनेकों लोगों के मन में भ्रांतियां पैदा करती है, एक झूठ हजारों लोगों के अंदर फैलता है, वो हजारों झूठों में बदल जाता है। लेकिन उसी समय अपने टार्च ली, आप समझदार थे, उसके लिए भी समझदारी की जरूरत है।